संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन मोक्ष अधिकार तक आ चुके हैं। जीवाधिकार से लेकर मोक्ष अधिकार तक की चर्चा हुई। जिस मोक्ष अधिकार की चर्चा अपन ने पिछले व्याख्यान में की थी, तो उसमें सबसे पहले ये बात कही थी कि बंध के ज्ञान से मुक्ति होने वाली नहीं है और ना बंध के चिंतमन से, उसकी डिटेल के चिंतमन से मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों विपाक विचय नामक धर्म ध्यान हैं, जो स्वभाव रूप हैं, व्यवहार धर्म ध्यान हैं, और इनसे पुण्य का बंध होता है, मुक्ति नहीं होती है। ऐसा कह के जो इस बंध के निरूपक शास्त्रों का अध्ययन करके संतुष्ट हैं, उनकी उत्थापना की, और फिर ऐसा कह करके कि बंधन के ज्ञान और चिंतमन से बंधन नहीं करते हैं, बल्कि बंधन काटने से बंधन करते हैं, ऐसा कह के उन्हें भेद विज्ञान की तरफ लगाया है, दुधाकरण की प्रवृत्ति की ओर प्रेरित किया है कि वे बंध और आत्मा को भिन्न भिन्न जाने। बंध और मोक्ष स्वांग हैं और भगवान आत्मा दोनों इनसे भिन्न है, इस बात को जाने। फिर प्रश्न हुआ था कि ये जानने की का साधन हमारे पास क्या है, तो कहते प्रज्ञा छेनी ही एक साधन है और कोई भी साधन नहीं है। इसके पीछे तर्क क्या है, कि तर्क यह है कि साधन और साध अभिन्न ही होते हैं, तो बाकी जितने क्रियाकांड हैं वे भगवान आत्मा से भिन्न हैं, अभिन्न नहीं है। मोह राग द्वेष के भाव हैं, वे भी भगवान आत्मा से भिन्न हैं, अभिन्न नहीं है, इसलिए वे निश्चय साधन नहीं हो सकते। और प्रज्ञा है वो भगवान आत्मा से अभिन्न है। वो दृष्टि के विषय में जो पर्याय से भिन्न की बात करते हैं वो जुदी बात है। वो प्रज्ञा छेनी अभिन्न साधन है और उसके द्वारा तू निज आत्मा और बंधादि पदार्थों को भिन्न जान। फिर उसने कहा अच्छा हमने जान लिया इससे, अब आप जान कर अब क्या करें। तो उनने कहा था कि जान कर बंध को छोड़ और आत्मा को ग्रहण कर। यहां तक अपन आ गए थे पिछले व्याख्यान में, ख्याल है। बंधे सुए बिरज्जदी, जो बंध से विरक्त होते हैं ऐसा जानकर और निज आत्मा को ग्रहण करते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो अब उसके आगे प्रश्न है कि वो आत्मा को ग्रहण कैसे करें। तो उसके लिए गाथा है 297 पेज नंबर 468। कह सोदिपदी अप्पा पन्नाये सोदुघिप दे अप्पा जय पन्ना ही विभक्तो तह पन्ना विघे तब्बो। सीधी सरल गाथा है कि तू उस प्रज्ञा छेनी से ही आत्मा को ग्रहण कर, जिस प्रज्ञा छेनी से तूने आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न किया था, अब उसी प्रज्ञा छेनी से तू आत्मा को ग्रहण कर। नीचे लिखा है जही पन्नाई विभक्तो, जिस प्रज्ञा छेनी से तूने विभक्त किया था तह पन्ना एव घेतव्यो, उसी प्रज्ञा छेनी से तू ग्रहण कर। अपन कोई काम करते हैं ना, जैसे लोहार है लोहे से उनको पीटता है तो कहते संसी से उठाएं, फिर घन से पीटें, फिर कहते फिर क्या करें, तो अपन हथियार बदलते रहते हैं ना। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो फिर एक कोई छुरी से काटता है, फिर कहती चीलता है, फिर उठाता, हर हथियार बार बार बदलता है ना। तो शिष्य को ऐसा लगा कि अब हमको जब हमने विभक्त करके दो टुकड़े कर लिए तो अब ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा साधन जुटाना पड़ेगा, अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम अपने दिमाग में से निकाल दे, बस मुक्ति का मार्ग जहां से शुरू होता है और मोक्ष में हम जहां तक पहुंचते हैं तब तक वो एक ही साधन है, वो प्रज्ञा छेनी, वो प्रज्ञा ही एकमात्र साधन है, कोई दूसरा साधन नहीं है। कहते जिससे तूने पर और आत्मा को भिन्न किया तू उसी से आत्मा को ग्रहण भी कर। ग्रहण करने के लिए कोई दूसरे साधन की जरूरत नहीं है, ये गाथा में बहुत ही स्पष्ट तरीके से वो कहा है। वो अपना इसमें कलश भी है ना, जिस क्या है देखिए कौन सी गाथा है, 296 है ना, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। पर जिस भांति तूने पर से विभक्त किया है उसी ही भांति इसे ग्रहण करना है। कहने का आशय है कि साधन बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते पहले ज्ञान से ग्रहण करें, फिर श्रद्धान से उसे ऐसा करें, फिर चारित्र से उसे ऐसा करें, फिर ध्यान से कर्म काटें, फिर उपवास करके निद्रा करें, ऐसे कोई भिन्न भिन्न साधन जुटाने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। कहने का आशय यह है कि एकमात्र ज्ञान ही साधन है और कोई दूसरा साधन तीन लोगों को तीन काल में किसी प्रकार संभव ही नहीं है। और कहां तक, मोक्ष में पहुंचने तक की ये बात है। पहले हमने दोनों को भिन्न भिन्न जाना तो कहते जानने में और ग्रहण करने में अंतर क्या है, जो तुम कह रहे हो उसी से करो, जब उसी से करना है तो वही प्रक्रिया हुई ना जिस प्रक्रिया से इसको ग्रहण करना है। कहते अंतर है कि जानने में तो ये बंद है और ये मैं, ऐसे दोनों ही ज्ञान के गेय बन रहे थे क्या? ये रागादि जिनका लक्षण है वो बंद है और ज्ञानादि जिसका लक्षण है वो मैं, ऐसे दोनों ज्ञान के गेय बन रहे थे तर्क और युक्ति से। और अब वो जो बंद है वो ज्ञान का गेय बनना नहीं रहा, बंद हो गया, ख्याल में है ना। और अब भगवान आत्मा को ही तू लगातार ज्ञान का गेय बनाए रख, उपयोग को वहीं स्थिर कर, इसका नाम ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि श्रद्धा में अपनापन स्थापित कर ले इसका नाम ग्रहण करना है, ध्यान कर ले वो भी होगा, क्योंकि जब ज्ञान गुण ये पक्का निर्णय कर लेगा कि ये ही मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, और जब वो पर से उपयोग हटाकर उसको ही अपने ज्ञान का गेय बनाएगा तो उसी का नाम ध्यान हो जाएगा, और श्रद्धा गुण भी सहज ही करवट ले लेगा, उसमें वो अपनापन स्थापित कर लेगा। तो जो त्रियात्मक मुक्ति का मार्ग है ना वो अपने आप सहज सिद्ध हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि अब तू तीन लगा, अब तू श्रद्धा गुण की छेनी उठा, अब चारित्र गुण की उठा, अब वीर गुण में ऐसा कर, तो ऐसे विकल्प खड़े करने की जरूरत नहीं है। बस तुझे तो सिर्फ जानना है और जानते रहना है, बस तेरा मुक्ति का मार्ग हो गया, इतना सा रास्ता है। क्या? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही है ना इसे ग्रहण करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई बदलने की नहीं है। तो फिर क्या करें? अब तो जानते रहें। तो जो कहते हैं, इस भेद विज्ञान की भावना को तुम तेजी से नचाओ, ऐसा बोलते हैं। जैसे कुमार के चके को कुमार नचाता है ना, तो पूरी ताकत से तेजी से नचाता है, और फिर हाथ छोड़ भी देता है तो वो तेजी से नाचता रहता है, और जब तक वो नाचता रहता है तब तक वो ऊपर उसके ऊपर अपना काम कर लेता है। तो भेद विज्ञान की भावना को तुम तेजी से नचाओ, तो वो तेजी से नचाने के लिए उन्होंने आगे की गाथाएं में बराबर तेजी से नचाने की भावना व्यक्त की है। देखो, इस भांति प्रज्ञा ग्रह की मैं हूं वही जो चेतता, अवशेष जो है भाव बे मेरे नहीं है जानना। इस भांति प्रज्ञा ग्रह की मैं हूं वही जो देखता, अवशेष जो है भाव बे मेरे नहीं है जानना। इस भांति प्रज्ञा ग्रह की मैं हूं वही जो जानता, अवशेष जो है भाव बे मेरे नहीं है जानना। पीछे भी कई गाथाएं आई ना, धर्मादि मेरे कुछ नहीं मैं एक गायक भाव हूं, रागादि मेरे कुछ नहीं मैं एक गायक भाव हूं, मोहादि मेरे कुछ नहीं मैं एक गायक भाव हूं। इसका नाम है भेद विज्ञान की भावना को नचाना। नचाना माने उसी में मन को लगाना। इन्हें तीन गाथाएं कही है, तो तीन गाथाओं में क्या है? पहली है देखना चेतना, और दूसरी है देखना, और तीसरी है जानना। बात तो ये कही है, क्योंकि देखने जानने को ही चेतना कहते हैं। जब मैं कहता कहता चैतन्य चैतन्य जिसे बोलते हैं ना आप, चेतना नाम का एक गुण है, उसी के दो भेद हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, समझे ना। उपयोग नाम का एक लक्षण है, और उसी के दो भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो पहले दोनों को कॉमन कहा, ज्ञान और दर्शन को, फिर बाद में ज्ञान दर्शन को अलग कहा और ज्ञान को अलग कहा। मैं ऐसा कहा करता हूं ना कि आत्मा को देखना दर्शन है और आत्मा को जानना ज्ञान है, आत्मा को देखना दर्शन है और देखते रहना ध्यान है, और आत्मा को जानना ज्ञान है और आत्मा को जानते रहना ध्यान है। आत्मा को देखना जानना दर्शन ज्ञान है, और आत्मा को देखते जानते रहना ध्यान है। मैंने इतनी दफे रिपीट किया तो अंतर भी समझ में आया होगा ना, और एक ही बात को रिपीट किया ये बात भी ख्याल में आई होगी। क्योंकि चेतना गुण कहो चाहे दो नाम ले दो, कहने का मतलब तो अभी तुमने प्रज्ञा छेनी की बात कही थी, और अब तुमने तीन काम बता दिए, देखना जानना और चेतना। तो वो तीन नहीं है, वो तो एक चेतना का ही विस्तार है। क्योंकि हमें उस चेतना के भेद विज्ञान की भावना को विकल्पों में नचाना है, तो भेद डाले बिना आनंद नहीं आएगा, इसलिए इतना भेद डाल के बात करते हैं। लेकिन अंदर में ये विकल्प टूट जाए, और मैं तो ये बस चैतन्यमय जो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये तो भाषा में आ रहा है, ये भाषा में भी नहीं आए, ये विकल्प में भी नहीं आए, प्योर ज्ञान में रहे, बस ज्ञान में बार बार आए, ऐसी भाषा भी नहीं, बस ज्ञान में रहे। और लब्धि और उपयोग का भेद भी खत्म कर दो, कि लब्धि में रहा कि उपयोग में रहा, कि कैसा रहा कि कैसा रहा, बस ज्ञान में निरंतर जो कायम है, चाहे वो लब्धि में हो चाहे उपयोग में, वो पर्याय में कायम है ना, तो वो भेद विज्ञान की भावना निरंतर कायम है, और कोई तुम्हें यहां से यदि सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो इसको करने का भी यही उपाय है। फिर चौथे से पांचवें गुणस्थान में जाने का भी यही उपाय है। फिर छठवें सातवें में जाने का भी यही उपाय है। फिर और आगे बढ़कर श्रेणी में जाने का उपाय भी यही है। तो उपशम से सबक श्रेणी में जाने का उपाय भी यही है। और वहां से केवल ज्ञान होने तक यही उपाय है, कोई दूसरा नहीं। और केवल ज्ञान होने के बाद फिर तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं, मोक्ष जाने तक भी यही उपाय है कि फिर तो मिलेगी छुट्टी, कि मोक्ष में रहने का भी यही उपाय है अनंत काल का। छुट्टी का सवाल कहां है? छुट्टी तो ऐसी चीज से ली जाती है जो हमारे लिए भारभूत हो, जिसके लिए तू इतना अनंत पुरुषार्थ कर रहा है प्राप्त करने के लिए, वो छुट्टी के लिए कर रहा है। बोल, जरा विचार करो। आपने जैसे मान लो आप मेडिकल में साइंस के विद्वान डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपने इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया और पढ़ाई पूरी करके गोल्ड मेडलिस्ट हुए, तो ये सब आप भूल जाने के लिए किया कि मैं कब भूल जाऊंगा साहब, फिर कब भूल जाऊं? वो ज्ञान जो गोल्ड मेडलिस्ट का आपको प्राप्त हुआ है, वो मरते दम तक आप रखना चाहते हैं कि नहीं? मैं पूछता हूं, बोलो। तो यहां बस की बात क्यों कर रहा है? जबकि वो ज्ञान कोई ऐसा नहीं है, यदि पैसा कमाने का विकल्प भर जाए तो उसकी फिर भी कोई जरूरत नहीं है। भूल जाए तो भूल जाए, फिर भी हम भूलने के लिए नहीं पढ़ते हैं ना। और यहां तू भूलने के लिए पढ़ने की बात करता है। ये तो अनंत पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली चीज है, तो अनंत काल तक कायम रहनी चाहिए। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई हैं, वो शुद्ध दशा में अनंत काल तक रहे कि नहीं रहेंगी? रही है। अनंतकंत काल यथा तथा सिर परिणय, जैसे मुक्ति होते वक्त तू परिणमित हुआ, तो वैसे ही परिणमित अनंत काल तक रहेगा, उसका नाम मोक्ष है ना। क्यों? तो फिर फंस गए हम अनंत काल को। क्यों? मैं तो पढ़ाई की बात की, कैसा हम साथ बहुत प्रयत्न करके हमने अपनी लड़की की शादी की, मकान बेच के 10 जोड़ी जूता घिस गए, सब कोशिश करके योग्यतम लड़के के साथ। और फिर कोई कहे, वो लड़की कहे कि मेरे को इस लड़के से आप साथ फेरे पड़ रहे हो, तो कितने दिन उसके साथ रहना पड़ेगा? छुट्टी कब मिलेगी? बोलो, कैसा लगेगा आपको? तो बेटी, अब तो तेरी इस घर से डोली निकली है, अब उस घर से दोबारा अब डोली निकलने का चांस नहीं है। अब तो क्या निकलेगी? अर्थी निकलेगी, बस तू समझ ले। तब तक तेरे को रहना है, और अगले भव में रहना कि नहीं रहना, तुम अपनी बात सोच लेना। वैसे राजुल तो कहती थी कि 9 भव की लगी है और 9 भव और लगी रहे। हम तो भारतीय संस्कृति में उसकी बात है, मैंने तो बहुत प्रयत्न किया ही है, तकलीफ उठाई है, तेरे अगले भव में तेरे बाप को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़े। क्यों? और ये सिलेक्शन नहीं करना पड़े, ये सिलेक्टेड ही काम अगले भव में भी तेरे काम आ जाए। भारतीय संस्कृति तो ऐसी है। तू कैसी बात करते? तू इस प्रज्ञा छेनी को सारे जगत में भेद कर, त्रिकाली ध्रुव भगवान में आत्मा में ले जाकर, फिर उसमें से कब छुट्टी मिलेगी, ये तेरे बात कहां आई? इसलिए मैं ये कहता हूं कि कब तक रहना पड़ेगा, ये प्रश्न तू अभी मत कर। तू एक दफे उसे प्राप्त कर ले, फिर तू ये प्रश्न करना, फिर हम उसका जवाब देंगे। क्योंकि अभी हम जो जवाब देंगे वो तेरी समझ में नहीं आएगा। जब वो आत्मा की प्राप्ति तेरे को हो जाएगी, तो तेरे को ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि इसके साथ कब तक रहना पड़ेगा, ये प्रश्न होगा कि ये छूट तो नहीं जाएगा। क्या समझ नहीं आया? मुझे 6 सम्मान चाहिए, 6 उपशम नहीं चाहिए, उपशम नहीं चाहिए। क्यों? कि बेटी, अभी तू जिसके साथ शादी कर रही है, कितने साल रहने पहले, 5 साल बाद तो तलाक मिल जाएगा ना। ये प्रश्न, जो शादी हो जाएगी और तू आराम से रहेगी, तो तेरे को ये डर लगेगा कि ये मेरे को तलाक ना दे दे। क्या है ना? अभी ये प्रश्न यहां खड़ा मत कर, क्योंकि अज्ञान की भूमिका में तू ये निर्णय कैसे कर सकता है कि तुझे वहां कितने काल तक रहना है? क्यों घर से आगे बोलते हो कि मैं टोडरमल स्मारक में पढ़ने जा रहे हैं तो वहां कितने दिन रहना पड़ेगा और कब छुट्टी मिलेगी घर आने की, क्यों? कि बेटा अभी तुम जाओ फिर इसका निर्णय, अभी 5 साल तो रहना है ना, फिर 5 साल बाद करना। तो आधे से ज्यादा तो लौट के घर जाते ही नहीं है, यही यहां और यहां नहीं रखे हम तो यहां आसपास मरराते रहते हैं, क्यों? यदि आज जो निर्णय कर रहे हो वो निर्णय उस दिन करते तो क्या होता बोलो? और मां बाप से कहते कि अब हम जा रहे हैं अनंत काल के लिए, अब तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं द्वारा, तो मां बाप भेजते क्यों? ऐसा समझ लेना कि मां बाप का साथ अनंत काल तक के लिए छोड़ के यहां आए हो। क्या कह रहे? क्यों? कि तुम इतने धर्मात्मा बन जाओगे, अब बेटे इतने बने नहीं हैं, अगले भव में साथ कैसे रहने वाला है? यदि तुम्हारी ये ताकत है कि उन्हें भी इतना ही धर्मात्मा बना लो तो बहुत बढ़िया बात है, अद्भुत बात है, क्यों? लेकिन वो इतने धर्मात्मा तो ये 5 साल के अथक अध्ययन दिनना रात की मेहनत से, क्यों, और इतनी देशना प्राप्त होने से, इससे बनता है। कोई जादू का मंत्र थोड़ी है कि तुम अपने पापा पे और मम्मी पे छिड़क दोगे से बन जाएगा, मिल जाएगा। ये कमाई थोड़ी है कि मैं FD अपने नाम से मिटवा के उसके नाम लिखा दूंगा, रजिस्ट्री मकान की उसके नाम करा दूंगा, ये ज्ञान की रजिस्ट्री थोड़ी ऐसे होती है, क्यों? वो तो रास्ते तो बदल जाने वाले हैं, रास्ते तो साथ के रहने वाले हैं ही नहीं ना, क्योंकि ये मार्ग लौकिक मार्ग तो है ही नहीं, ये तो अलौकिक मार्ग है। एक भाई चला गया मेडिकल में, क्यों, एक चला गया इंजीनियरिंग में, और एक आ गया है धर्म पढ़ने। तो अब फिर जाके हम सब इकट्ठे रहेंगे, छोड़ दो इस बात को, उसी दिन तक अच्छी लगती है। उनको किसी जंगल में रहना पड़ेगा, एक बांध बनेगा ना, तो कहां बनता है बांध? जंगल में। और बांध बन जाता है तो वहां मंगल हो जाता है, वहां भी एक नगर बस जाता है, फिर वो जगह रहने लायक जगह हो जाती है, नल बिजली सब हो जाते हैं, सड़कें हो जाती हैं, तो वो दूसरों के लिए, फिर तुम भागो वहां से, फिर दूसरा बांध बनाने के लिए फिर वनवास तुम्हारे लिए। तुम वनवासी रहोगे, और वो डॉक्टर सुबह से शाम तक बीमारों के बीच में रहेगा, रोगियों को ही देखता रहेगा, क्यों? और तुम कहीं त्रिकाली तो भगवान आत्मा के गीत गा रहे होगे, तुम्हारा उनका क्या साथ? गया, काम खत्म। ये पर को जो छोड़ने की बात है, पर से जो भेद विज्ञान की बात है, वो अनंत काल तक के लिए छूटने की बात है, लेकिन ये उस समय कहने की बात नहीं है, क्योंकि उस समय ये कह दो तो उस समय भी नहीं छूट पाओगे। देखो वो पढ़ लिए ना अपन ने, पन्ना एक ये भाव मेरे नहीं है, ये भेद विज्ञान की भावना को जो 4 गाथाएं अपन ने पढ़ी थी वो इसमें हैं प्राकृत भाषा में, और इनसे वो इस तरह से कहते भावना को नचाते 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 हैं। जब वो इतना सबल हो जाए वो भावना कि समझ लोगे संसार में रखने की रहने की भावना से ही मुक्त हो जाए तो समझ लेना तेरा मोक्ष हो गया। क्या कह रहे? कैसे मुक्त होना है? अभी तो तेरे को संसार में रहना है, अभी तो लौट के आना है, क्यों? वास्तव में ये स्थिति तो ऐसी है कि एक भिखारी को राजा बना दिया गया। पहले के जमाने में होता था ना कि राजा का कोई उत्तराधिकारी हो नहीं, राजा किसी को गोद लिए बिना ही मर जाए तो अब क्या करें? तो कहते राजा के हाथी को भेजो और वो जिसको बैठा के ले आए उसे ही राजा बना दो। तो वो हाथी गया और एक भिखारी को बैठा के आया, ठंड गए, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हाथी भूल गया, द्वारा भेजो, द्वारा भेजो, द्वारा भेजा, तो फिर उसी को उठा लाया, तो फिर रिजेक्ट किया कि नहीं नहीं उस आदमी को छिपा दो कहीं, फिर भेजो, फिर भेजा तो ढूंढ ढांढ के वो जब तक किसी को लाया ही नहीं, जब वो दिखा तब उसी को बैठा के लाया कि अब तो इसे ही राजा बनाना पड़ेगा, कि चल तेरे को राजा बनाएंगे। तब वो अपने तीथड़े मीथड़े थे ना पुराने फटे फटे कपड़े, तो उन्हें समेटने लगा, कहीं क्या करता है, इन्हें पहन के सिंहासन पर बैठेगा है ना, वहां तेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े तैयार हैं और तू इनको नहा धोकर बिल्कुल एकदम अप टू डेट बनके वहां बैठाला जाएगा। क्या अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो कोई बात नहीं है, तो संभाल के तो रख देने दो, जब लौट के आऊंगा तब तो काम आएंगे, नहीं तब मैं क्या पहनूंगा। बोलो, उसे कुछ पता हो रहा है तू क्या बन रहा है? और अभी भी लौट के आने का विचार है और कहीं वहां मन नहीं लगा तो ऐसा विकल्प भी, अब सगुन का विकल्प है ना, ऐसा विकल्प आना चाहिए और आवे तो समझ लेना वो क्या है। ऐसे ही तुम उन गूदड़ियों में से निकल करके चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हो, समझ लो आप, तुम और हम सब जो भी इस क्षेत्र में आया है। ये मार्ग तो भाई इसी का है, इसको तुम छोटी बात नहीं समझना। आचार्य कह रहे ना ये मोक्षाधिकार है, मोक्षाधिकार में क्या बात करेंगे, ये आगे ऐसी गाथा टीका है, मैं यह मोक्षाधिकारी है ना, 200वीं गाथा प्रयोजन सार की है ना, उसकी टीका में अमृतचंद ऐसा लिखते हैं, मैं यह मोक्षाधिकारी, यहां से शुरू करते हैं, मैं मोक्षाधिकारी हूं, कौन है तुम्हें, मैं मोक्षाधिकारी हूं। तो ये मोक्षाधिकार है, कौन सा अधिकार है भाई, तो हो गया, तो मोक्षाधिकार है तो तू मोक्षाधिकारी है, तू मोक्ष के अधिकार में आ गया है ना, तो उस भेद विज्ञान की भावना को तीव्रता से नचा, तो इससे मोक्ष कि हां इससे ही मोक्ष होगा और किसी से मोक्ष होगा नहीं, कि मैंने तो गलतियां बहुत की हैं, कि निकाल दे दिमाग से, तूने एक ही गलती की है और आज तक तो बहुत बहुत गलतियां तूने कुछ की नहीं है, कि क्या गलती की तूने बता, कि मैंने बहुत जीवों को सताया, बहुत जीवों की हिंसा की, चोरी चपोटी भी बहुत की, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, आपको क्या बताऊं साहब, मैंने बहुत पाप किए, आलोचना पाठ पढ़ के सुना दूं आपको, तो हिंसा पुनः झूठ जो चोरी पर बनता सौंदर्य जोरी, आरंभ परिग्रह भीने पन पाप जु आवेद कीने। वो कहते हैं आलोचना प्रतिक्रमण ये तो विश्वकुंभ है, ऐसा कहने वाले हैं अधिकार में, कहां तू इस चक्कर में पड़ा है, अरे तू बहुत धोखे में है, तूने कुछ किया ही नहीं। ये टीवी में ऐसे सीरियल मीडिया लाते हैं कि इसमें क्या बताते हैं कि एक आदमी किसी के हाथ से ऐसे गया, उसने बंदूक ऐसे छीनी उठाई, ऐसे कुछ कर रहा था और गोली चल गई उससे, लेकिन सामने वाला आदमी उसकी गोली से तो मरा नहीं, वो तो गोली ऊपर को चली गई, और पीछे से किसी बदमाश ने गोली चलाई और वो सामने मर गया, तो वो ये समझता है कि मेरी गोली से मर गया, और जिसने गोली से मारा है वो भी जानता है कि इसे भ्रम हो गया है, तो उससे कह रहे भाग जा भाग जा भाग जा, छिप जा, नहीं तो पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा, और उसे और भगा करके अपराधी बना करके और उसको इस बात का लगा देता है। तो और जब भविष्य में अनेक कारणों से सिद्ध हो जाता है कि तेरी बंदूक में से जो गोली निकली थी वो गोली तो वहां जाकर एक पेड़ पे लगी है, लटकी है, और ये जो गोली है जो किसी दूसरे की बंदूक की गोली है, गोली से निर्णय हो जाता है ना, हाँ बस मेरे तो अपराध किया ही नहीं, मेरे तो मेरे से तो कोई मरा ही नहीं, अपराध बोध, तूने कुछ भी अपराध किया ही नहीं, तू अपराध बोध में ग्रस्त हो गया है, बस मैंने अपराध किए, अपराध किए, क्यों नहीं किया मैंने अपराध साहब, मैंने झूठ नहीं बोला रमेश जी कि बेवकूफ तू बोल ही नहीं सकता है, भाषा तो पुद्गल की पर्याय है, तू तो चेतन द्रव्य है और दो द्रव्यों के बीच में तो वज्र की दीवार खड़ी है, तू बोलने की बात लाया कहां से, जब तू बोल ही नहीं सकता तो झूठ बोला सत्य बोला कहां से। कहते मैंने चोरी नहीं की कि परद्रव्य के ग्रहण से तो भगवान आत्मा शून्य है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है, तू कि मैंने जीवों को मारा कि तू मारे ही नहीं सकता है कि मारेगा कैसे, तेरे को भ्रम हो गया है कि मैंने मारा, तू अपराध बोध से ग्रस्त है, तू तो अपनी सीमा के बाहर कभी निकला ही नहीं कि मैंने इतना परिग्रह जोड़ा कि मूर्ख तेरे जोड़ने से जुड़ता कहां है, वो तो पूरा पुण्य के उदय से अपने आप जुड़ गया और मैंने साहब ऐसी गलती की से वो इतना सब हाथ से निकल गया, सारी कमाई निकल गई और फिर हम सड़क पे आ गए, 5 रुपए भी जेब में नहीं थे। और वो जिस पुण्य के उदय से आए हैं वो खलास होते ही वो चले जाने वाले हैं, वो तेरा से उसका कोई संबंध ही नहीं है, तू इस अपराध बोध से ग्रस्त हो गया है बस, कि मैंने इतना परिग्रह जोड़ा कि मैंने छोड़ा, तूने कुछ किया ही नहीं है। मोक्षाधिकार में ये कहते हैं ऐसा ऐसी गाथा है इसमें कि मोक्ष और बंध तो जाने जाते हैं होते नहीं है। 120वीं गाथा आएगी अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की, दिट्ठी जहई बनाने वाली गाथा, उसमें यह बात बहुत साफ शब्दों में कही है कि कुछ नहीं हुआ है कि मैंने इतनी गलतियां की साहब, इतने पाप किए कि अनंत भव में भी नहीं कटेंगे। क्यों कहने, हमारे एक पंडित जी गुरु जी कहते थे कि नहीं नहीं सब अंतर्मुहूर्त में भस्म हो जाएंगे, कि तू ये जो मान्यता है कि मैंने बहुत पाप किए ये भी गलत है, और जो तेरे गुरु जी ने कहा कि भस्म हो जाएंगे ये भी गलत है। क्यों कि वे हैं ही नहीं तेरे पास, क्या भस्म होंगे, तूने बांधे ही नहीं, तूने किए ही नहीं। तो मैंने भी इतने दुख काय के लिए भोगे कि इसलिए भोगे कि मैंने अपराध किए ऐसी मान्यता के कारण। वो जंगल जंगल में भागता फिर रहा है कि मेरी गोली से मर गया, पुलिस से डर डर के भागता फिर रहा है, तो काय को भाग रहा था अभी गोली से नहीं मरा तो बोलो, क्योंकि उसे भ्रम हो गया है कि मेरी गोली से मरा है, इसलिए 10-20 साल जंगल में भटक भटक करके बिता दिए। बोलो, तू भूल गया अपने को, अपने को भूल के आप हैरान हो गया, वास्तव में तेरे से भूल हुई है तो वो सिर्फ एक ही हुई है कि तूने पर से भिन्न अपने को नहीं जाना, बस इसके अलावा कोई दूसरी भूल हुई नहीं है। क्यों कि इतनी सी जरा सी गलती, कोई इतना दंड, ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसी सजा नहीं हुई कि नहीं भाई साहब, तूने अपनी इस झूठी मान्यता के कारण अनंत पर पदार्थों का मालिक बना, अधिकार जमाया, ख्याल में आया ना, इतनी सी बात के कारण और तूने उसमें सब कुछ करने का प्रयत्न किया और उसमें कुछ हुआ नहीं, तेरे प्रयत्न निष्फल गए, यही अनंत दुख है। और कदाचित कभी कोई पुण्य का योग ऐसा आ गया और कुछ अनुकूल हो गया तो बस मैं चौड़ा और बाजार सकरा हो गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कुछ हुआ नहीं है। इसलिए इसमें एक गाथा है कि अपराध, अपराध माने क्या, गाथा है, ये शब्द हैं, संसिद्धि, राज, साध, साधित, ये सब आत्मा के नाम हैं। ये अपराध ये क्या है, अपगत राधा इसे अपराधा, राध माने आत्मा, और तूने उस आत्मा को नहीं जाना, नहीं माना उसे निज, पर इसी का नाम अपराध है, इतना ही अपराध हुआ। ये जो राधा राधा बोलते हैं ना, राधा उनके यहां वो भी आत्मा के ही अर्थ में है, तो आत्मा को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते ना, मेरी आत्मा में ऐसी है, मेरी आत्मा ऐसी है, मेरा आत्मा ऐसा है, कोई नहीं बोलता। क्यों, मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, ज्ञान आनंद स्वभावी है। तेरी आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी है कि तेरा आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी है, आत्मा को स्त्रीलिंग बना दिया अपन ने।
तो राधा भी स्त्रीलिंग है, बस राधा माने भी आत्माएं हैं, तो कहते हैं क्या कि तुम अपनी राधा को भूल गया, बस इतनी सी गलती है और कुछ नहीं है, अपनी आत्मा को भूल गया बस, और कोई गलती तेरे से हुई नहीं है। तो गलती कैसे सुधरेगी कि कुछ नहीं, बस तू जान ले। मेटने का उपाय क्या है, पर से भिन्न भगवान आत्मा को जान ले। कि कैसे जानूंगे, प्रज्ञा से नहीं से जान ले, और फिर जान के क्या करूंगे, उसे पकड़ ले। कि कैसे पकड़ूंगे, प्रज्ञा से नहीं से पकड़, कि फिर क्या करूं पकड़ के, कि जकड़ ले। कि कैसे जकड़ूंगे, प्रज्ञा से नहीं से जकड़, क्या उसी में जम जा उसी में रम जा। कि कैसे जमूं, कि कैसे रमूं, कि उसे जानते रहे, इसी का नाम जमना रमना है। और क्या करना है, कोई दूसरा काम करना ही नहीं है, बस एक ही काम, और वो तेरे तेरी पर्याय है। अभी इसको यहां अलग कर दें तो फिर पराधीन हो जाती है वो। इसलिए यहां प्रज्ञा श्रेणी को वरुणादि और रागादि में शामिल नहीं किया। सब मुमुक्षुओं ने ये तो बहुत सुना, केवल ज्ञान से भी भिन्न, केवल ज्ञान से भी भिन्न, लेकिन कहीं एक रागादि के समान इसको भिन्न नहीं करना, थोड़ा अलग बचा के रखना, ये इसमें बात ये है। और ये बात आप गहराई से पढ़ना समय सार को, कदम कदम पर मिलेगी, यहां भी मिलेगी और आगे चल करके सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी मिलेगी। क्या मोहनलाल जी, आज तक जो समझा था उससे कुछ अलग लग रहा है ना, ऐसी बात है। ये कह रहे, देखो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो यहां से शुरू किया है, उसके साथ तेरा तारात्म संबंध है। पहली गाथा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की यहां से शुरू होती है, पहली गाथा पढ़ो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की, हो गया है तो मोक्षाधिकार। तो देखो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा पढ़ो पहली, कहां से शुरू करते हैं वो बात। दवियम जम उपजई गुण ही तम ते ही जान सू अनन्यम जय कण गादी हेदु पज्जये हिम कणकम अनन्य में जीवासा जीवस्य दुजे परिणामा दुदेश दास सुत्ते तम जीव अजीवम बा ते ही अनन्यम विजान ही। क्या कहते हैं कि जो द्रव्य है वो अपने गुणों में उत्पन्न होता हुआ उन गुणों से उसे अनन्य जानो। क्या कह रहे, गुनगुन शतक में अपन ने पांच गाथाएं लिखी ना, द्रव्य द्रव्य पर्याय से अनन्य है, द्रव्य गुण से अनन्य है, है ना, क्या है बोलो। पर्याय बिन ना द्रव्य बिन पर्याय ही दोनों अनन्य। तो ये जो गाथाएं हैं ये यही बात कह रहे हैं। देखो यहां एक गाथा भी है, इसका भी अपने पढ़ते हैं, देखो इसका भी छंद है ना, जो अपन ने दो गाथाएं पढ़ी ना, ये सब हे जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यो त्यों गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जान अनन्य त्यों जीव और अजीव के परिणाम जो जिन बर कहे वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम से। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की पहली गाथा है, माथे पर लिखी है। सबसे श्रेष्ठ अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान, उस सर्वशुद्ध ज्ञान में कहां से शुरू करते हैं कि जो द्रव्य है वो अपनी पर्यायों में उत्पन्न होता है और उस द्रव्य को तुम अपनी उन पर्यायों से अनन्य जानो, ऐसा लिखा है ना, कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा। और ये गाथाएं वही गाथाएं हैं कि जिन गाथाओं में से गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली, इन्हीं गाथाओं की वो टीका है जिसकी पहली पंक्ति यह है कि जीवो ही तावत कृमनियमात परिणामय उत्पद्य मानो जीवा एव अजीवोपी कृमनियमात परिणामय उत्पद्य मानो अजीवा एव कि जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है अजीव नहीं। ये भेद विज्ञान की पराकाष्ठा है। वो कहते हैं भिन्न जानों की बात थी ना, और अजीव भी अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है जीव नहीं। और इसके बाद जो थीम है वो बहुत लंबी दूर तक सर्वशुद्ध अधिकार में इस लाइन पर चली गई कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता है, अन्य का कर्ता नहीं। इति अकर्ता अवतिष्ठते, इस प्रकार यह आत्मा अकर्ता सिद्ध हुआ। अपनी पर्यायों का कर्ता है, समझे ना? क्यों? क्योंकि अपनी पर्यायों का कर्ता नहीं होगा तो अपनी पर्यायों का कर्ता फिर कोई दूसरा होगा, तो फिर तो महा संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य खड़ा हो जाएगा। जो कर्ता के अधिकार में डंके की चोट ये बात हम कह के आए हैं, कौन सी? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन है ही नहीं। बोलो क्या करना? यहां से शुरू किया। बहुत से लोग कहते हैं कि इन गाथाओं का आप ऐसा अर्थ करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय निकालते हैं। अरे इसमें तो ये लिखा है कि जीवो जीव, जीव जीव ही है अजीव नहीं है? क्या जीवो ही तावत कृमिनियमात्म परिणामयी रुतपद मानो जीवा एव नो अजीवा। ये तो जीव जीव नहीं है, अजीव है। तो अजीव से भेद विज्ञान कराया है। इसमें ऐसी बात कहां है कि पर्याय क्रमबद्ध होती हैं? लेकिन मालूम इसका क्या अर्थ है वास्तविक, कि जब जीव के जीव बदलता है कि नहीं बदलता? तो कभी नहीं बदलता, बदल के अजीव नहीं होता। इसके लिए कहते हैं वो कभी नहीं बदलता। अनादिकाल से अनंत काल तक कितना ही कर्मों के बीच में रहे, कितना ही पाप करे, निगोद में रहना पड़े, नरक में रहना पड़े, तो भी जीव कभी अजीव नहीं होगा। तो पलटता ही नहीं है, वो बदलता नहीं है। कि कौन कहता नहीं बदलता है? एक समय भी ऐसा नहीं होता है कि वो बदले नहीं। तो क्या कह रहे? प्रति समय बदल करके भी कभी नहीं बदलता। कि क्या बात कर रहे हो? एक क्षण में कहते हो बदलता है, एक क्षण में कहते हो नहीं बदलता। एक क्षण में कहते कभी नहीं बदलता, और एक क्षण में कहते हो कि प्रति समय बदलता है। तो कहते भाई हम जब बदलने की बात कहते हैं तो अपने पर्यायों में जो परिवर्तन होता है उसकी बात करते हैं, और जब नहीं बदलने की बात करते हैं तब हम द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं कि द्रव्य का स्वभाव जीव माने जीवन है, चेतन है, तो बदल के अजीव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बदलता तो है और बदल के धीरे धीरे अजीब हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्या बदल के वो अजीब नहीं होता, इसलिए ये बात कही। तो फिर कहते बदलता तो है, कहां बदलता है? तो फिर बदलता तो किसी दूसरे के ही कारण होगा, तो उसने उसको बदल दिया कि नहीं? यहां दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी करनी है, तो फिर कोई दूसरे के कारण नहीं बदलता, निमित्त के कारण नहीं बदलता। तो बदलता है तो कैसे बदलता है? तो कहते हैं कि वो स्वयं बदलता है। तो स्वयं बदलता है तो किस पर्याय रूप पर्ण में? तो कहते हैं कि वो कृम से बदलता है। कि कौन सा कृम? कि हरेक जीव का एक सुनिश्चित क्रम है अनादि से अनंत काल तक, उस नियमित क्रम से वो पलटता है। इस तरह इसमें से क्रमबद्ध पर्याय आई कि पलटना और नहीं पलटने का चक्कर है। कि ऐसा नहीं पलटता कि जीव पलट के धर्म हो जाए, अधर्म हो जाए, काल हो जाए, ख्याल में है ना? और एक समय भी पलटे बिना रहता नहीं। तो फिर मोक्ष में नरक में जाएगा कि स्वर्ग में? बोलो ये जीव पाप करेगा, खोटी संगति में पड़ेगा, तो नरक जाएगा, अच्छी संगति में पड़ेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो जिनकी संगति में पड़ेगा वे स्वर्ग ले जाएंगे क्यों, और नरक की संगति में पड़ने वाले नरक ले जाएंगे, तो वे द्रव्य स्वतंत्र नहीं रहा ना। तो कहते हैं कि इसे स्वर्ग में जाना होगा तो स्वर्ग जाएगा और नरक में जाना होगा तो नरक जाएगा। कि जाना होगा का क्या अर्थ, कि उसकी मर्जी इच्छा, कि इच्छा नहीं, फिर तो इच्छा के अधीन हो गया, और इच्छा भी तो विकार है और पर है। हम तो निर्मल पर्याय को शामिल किया है भैया, विकारी पर्याय को तो पर में घोषित किया, वरुण आदि अरु राग आदि तेने भाव को न्यारा किया। तो इच्छा के अधीन भी नहीं रखना, जैसा चाहे वैसा भी नहीं, स्वतंत्र रखना है। तो स्वतंत्र तो तभी कहलाएगा कि हम जैसा चाहें वैसा करें, तो स्वतंत्र कहलाएंगे ना। हम चाहें तो प्रवचन में आए और नहीं चाहें तो नहीं आए, तब स्वतंत्र कहलाएंगे। क्यों कहते इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, ये चाह के अधीन हो गए। तो चाह के अधीन स्वतंत्रता हुई कि परतंत्रता, चाहे तो विकार है ना, और विकार तो पर है ना, तो तुम पर के अधीन हो गए ना, तो फिर कैसे बदले, क्या करें। कि तुमने चिंता मत करो, अनंत काल पहले से ही ये सुनिश्चित एक क्रम है, उस क्रम के अनुसार ही तुम में प्रति समय परिवर्तन होगा। ऐसे प्रति समय बदल करके भी तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, इसका नाम है जीवो ही तावत कृमे न मात परिणाम उत्पद्य मानो जीवा एत नो अजीवा। और कहते हमारे सब जीवों के बारे में है, कि क्या बात करते हो, सब जीवों के बारे में तो है ही, अजीवों के बारे में भी है। अजीवो पी कृमिनी मात्र परिणाम ही उत्पद्य मानो अजीवा एत नो जीवा। ख्याल में आया ना, इस तरह दो द्रव्यों की पृथकता भिन्नता को बड़ी गहराई से स्थापित करने के बाद, समझे ना, बड़ी गहराई से स्थापित करने के बाद दो द्रव्यों के बीच में और उनके परिवर्तन को, परिवर्तन तो उसका स्वभाव है, और स्वभाव कहते ही उसे हैं जो पर से निरपेक्ष। यदि उसे पर की अपेक्षा हुई और पर के अनुसार वो बदला तो अनंत पराधीनता हो गई। क्या ख्याल में आया, क्यों साहब आप वहां जाओगे कि ठीक है तुम ले चलोगे तो जाएंगे, तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। तो वो समझता है कि मैंने इसके माथे पे भार लाद दिया और मैं आजाद हो गया, अब मेरे को माथे पे कोई बोझा नहीं है। सबसे ज्यादा अपने माथे पे बोझा लिया है तुमने, क्यों, कि तू तो तैयार घोड़ा सा कस के तैयार रहे, कोट मोट पहन के, साड़ी माड़ी पहन के, जो भी पहनना हो, बाल माल ऊंच के, और वो आएगा तो जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। क्यों साहब किस तैयार खड़े, वो आ रहे हैं ना, उनको मुझे जाना है, मुझे जाना है, उसमें मैं उसका अध्यक्ष हूं ना, वो बुलाने आ रहे हैं, उसका मैं जाना है। तो दो घंटे तक वो नहीं आए, क्यों साहब क्या हुआ, क्यों साहब क्या, क्यों साहब क्या हुआ। तू बन गया, यदि तू ये कह देता कि आप चिंता मत करो, कुछ भेजना नहीं, मैं आ जाऊंगा, यदि मुझे अनुकूलता हुई तो मैं आ जाऊंगा, तो तू स्वाधीन होता, और जाता तो जाता और नहीं जाता तो नहीं जाता, आधा घंटा लेट जाता तो भी चलता, फिर डेढ़ घंटा पहले से तैयार होने की जरूरत नहीं थी, क्यों। लेकिन वो क्या समझता है कि मैंने इसे बांध लिया। अरे दूसरों को बांधने वाला पहले स्वयं बनता है, क्या नहीं आया समझ में। जैसे आपने मेरा ऐसा हाथ पकड़ लिया, अब बोला अब आप कहीं नहीं जा सकते, उनका अच्छा कि नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, मैं कहा तुम भी नहीं जा सकते। उसने मेरे को पकड़ के मुझको रोका है कि स्वयं भी रुका के नहीं रुका, कब तक, जब तक वो मुझे रोके रहेगा तब तक उसे रोकना अनिवार्य है, और मैं कहता हूं कि मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है, देख पकड़ के। अब मेरे तो लेटरिन जाना होगा तो तुझे झकमार के लेटरिन ले जाना पड़ेगा, आज मैं कहूंगा जाना है तो सब चल, और तुझे जाना होगा
तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं भाग जाऊंगा। बोले बंधा कौन है दादा? एक चोर बैठा हो चार पुलिस वाले, मालूम एक चोर के लिए चार पुलिस वाले, पुलिस वाले बंधे हैं कि चोर बंधा है? दिखता है जगत को चोर बंधा है, और बंधे होते हैं पुलिस वाले, क्यों? कि वे कहीं नहीं जा सकते, इसलिए आठ आठ घंटे में थक्के चकना चूर हो जाते हैं, और वो दूसरे की ड्यूटी बदलती है, फिर दूसरे चार आते हैं, फिर वे जाते हैं, फिर आठ घंटे में 24 घंटे में 12 आते हैं, और थक थक के चकना चूर होकर जाते हैं, और वो चोर आराम से लेटा रहता है, जब सोना होता है जब सोता है, जब जागना होता है तब जागता है, और आराम है। अब सुबह प्रवचन में भी नहीं जाने, क्लास में भी नहीं जाने, प्रार्थना में भी नहीं जाने, सब छुट्टी, क्यों? आराम से सोता कि नहीं? कौन बना है? बांधने वाला बनता है भाई साहब। दो द्रव्यों के बीच में कोई बंधन का सवाल ही नहीं है, तो वो अपने नियमित परिणामों के अनुसार सुनिश्चित रूप से बदलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। उसमें तो इतना तक लिखा है कार्तिकेयानुपेक्षा में कि इंदो वा जिनेन्दो वा, कि इंद्र और जिनेन्द्र भी उसके परिवर्तन में समर्थ नहीं है। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? वो गाथा है ना, जम जमी देशे जैन काले ने जैन विहाने ने, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त पूर्वक जो जब जैसा होना है उस द्रव्य का उसी काल में उसी क्षेत्र में उसी निमित्त से वह वैसा ही नियम रूप से होगा, और उसे इंद्र और जिनेन्द्र कोई भी नहीं पलट सकते। कार्तिकेयानुपेक्षा की ये गाथाएं हैं, मूल गाथा, मूल गाथा में है। और ऐसा देखो उसमें इंद्र और जिनेन्द्र ये दो जोड़ी कैसे बनाई? छंद के अनुरोध से। कोई कहता है कि इंद्र नहीं पलट सकता क्योंकि वो उसमें क्या ताकत है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान तो अनंत वीर के धनी हैं और तीर्थंकर अतुल बल के धनी होते हैं, तो वे तो पलट लेंगे, इसलिए कहा कि जिनेन्द्र नहीं पलट सकते। तो जिनेन्द्र नहीं पलटेंगे, ये क्यों पलटेंगे? वे तो वीतरागी हैं, उन्हें पलटने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए नहीं पलटते हैं। लेकिन इंद्र को तो इच्छा है, वो पलट सकता है। तो कोई ये माने कि जिनेन्द्र नहीं पलट सकते, कि इंद्र नहीं पलट सकते, तो एक रागियों में श्रेष्ठ और एक बीतरागियों में श्रेष्ठ दोनों का नाम ले दिया कि ना इंद्र पलट सकता और ना जिनेन्द्र पलट सकता। क्यों? रागियों में सर्वशक्तिशाली इंद्र, सक्को जम्बू दीपो लिखा है, इंद्र जम्बूदीप को पलट सकता है। लिखा कि नहीं लिखा आपके करुणान योग में इंद्र जी? लेकिन पलटा कभी आज तक? बस ऐसी शक्ति है इंद्र में। अरे ये तो उसकी सर्व शक्ति के नाप का कथन है कि कितनी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति प्रयोग में आएगी कभी? वो जम्बूदीप को पलट देगा ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक में कहावत है ना कि भगवान गंजे को नाखून नहीं देता। जिसमें शक्ति होती है उसे पलटने का भाव नहीं होता, वो इतनी कसाय मंद वाला होता है, कसाय के अभाव वाला होता, सम्यक दृष्टि होता है, समझे ना? और जिसको पलटने का भाव होता है उसमें शक्ति नहीं होती है। कहां तो ये कहते हैं एक द्रव्य एक परमाणु मात्र को हिला नहीं सकता, और यहां कहते हैं कि इंद्र जम्बूदीप को पलट दे। क्या दोनों बातें कहां से लाई? एक ही शास्त्र में है कि नहीं? जैन दर्शन में बोलो सत्य कौन है? दोनों ही सत्य हैं, क्यों? परस्पर विरोधी कोई कथन है ही नहीं। पलटते पलटता है, पलटा ऐसा क्या लिखा? वो तो पलट सकता है, ऐसी बात है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि वो हमारी छोटी कुतिया है ना मरी सी अधमरी, वो चाहे तो शेर को टोर खाए लेकिन कभी चाहेगी नहीं। मन धरे तो बुंदेलखंडी भाषा में बोलते, वो मन धरे तो शेर को टोर खाए लेकिन कभी मन नहीं धरेगी। ऐसे ही जम्बूदीप इंद्र चाहे तो जम्बूदीप को पलट दे
लेकिन कभी चाहेगा नहीं, ऐसी शक्ति है वो तो। तो एक देव दूसरे को परमाणु को भी हिलाता नहीं है, इससे उसका विरोध कहां है? वो तो शक्ति के माप का कथन है। क्या कोई ये कहे आप चाहो तो मैं भी 5 किलो दूध पी सकता हूं, लेकिन कभी पिया नहीं और पीऊंगा नहीं, तो शक्ति का निरूपण है ये। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं करूंगा ही। तो एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, ये परम सत्य है, ये समय सार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का सत्य है, जिसे सर्वविशुद्ध ज्ञान कहते हैं, दृढ़ से वो पर्याय से, ख्याल में आए ना, उसमें ये बात कही है। इसलिए भाई ये तो जैन दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन है, और इसे मानकर जो अपने उपयोग को सारे जगत से हटाकर अपने आत्मा पे ले जाएगा उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी होगी और अवश्य होगी। अब बाकी जो बात है वो कल सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की।